इष्ट के प्रति ममता आसक्ति ये सब बढ़ी रहती है। जो जो बाधाएं हैं वो दूर होती हैं और उनके प्रति जो बाधाएं जो घटने के बाद उनके प्रति हमारा ममता या निष्ठा रुचि श्रद्धा इत्यादि सब बढ़ी रहती है। आप बोलिए तो इसके संबंध में बैठक होती है, विभिन्न देशों के प्रतिनिधि ले एक जगह बैठ करके बातचीत करते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करके हम अपने देशवासियों को हम सुखी और शांति बना सकें, यही उद्देश्य है। तो भक्तों की इष्ट गोष्ठी होगी तो वो किस विषय में होगी?
अनर्थों के उत्पाद से कैसे बचा जाए
और
भक्ति
ये उसका उद्देश्य होना चाहिए। अब इष्ट गोष्ठी के बहुत से स्तर हैं, बहुत से स्तर। जो लोग अब अनर्थ युक्त हैं इनकी एक इष्ट गोष्ठी होगी तो इसमें क्या होगा? जो भी सभी अनर्थों से युक्त हैं इनकी इष्ट और गोष्ठी होगी तो क्या होगा? उनका इष्ट क्या है?
कैसे 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 अनर्थ दूर जाए?
अनर्थग्रस्त वाले लोग होंगे।
अनर्थग्रस्त वाले लोग
उनकी इष्ट गोष्ठी में क्या होगा? जो उनका इष्ट है उसके संबंध में बातचीत हो। तो मान से एक आदमी को कुछ भक्ति में आ रहे हैं किंतु अनर्थ है ना, तो उसके लिए होगा जैसे ये चीज की कमी है, इस चीज को पूरा करने से ये काम ठीक हो सकता है। अब जैसे बहुत से भक्त लोग हैं उनको ये दिख रहा है, कहना तो नहीं चाहिए फिर भी कह रहा है, एक मंदिर में जाता तो हमारा सब काम हो जाएगा। तो होगा क्या होगा? मूल समस्या क्या है?
भक्ति।
उस पर इष्ट गोष्ठी होनी चाहिए जो अनर्थ मुक्त एक भी व्यक्ति रहे उस व्यक्ति उस गोष्ठी में, तब तो उसको घुमा फिरा करके उधर लाएगा। और नहीं तो वही इष्ट गोष्ठी जो संयुक्त राष्ट्र की होती है या हमारे संसद में होती है बस यही, और परस्पर झगड़ा इत्यादि होता है। और एक ही अनर्थ मुक्त व्यक्ति रहे जो जिसका इष्ट कृष्ण है या कृष्ण प्रेम है, गोपी प्रेम है या ब्रज प्रेम है, तो धीरे 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 इसमें बाधाएं क्या है वो बतलाएगा, और धीरे धीरे वो कैसे चीज प्राप्त होगी इसमें बाधाएं क्या है और किस ये अन्वय व्यतिरेक में ले जाएगा। जैसे अब ऊपर में चलते हैं, बहुत सी गोपियां एकत्र एक घर में हुई अपने अपनी गोष्ठी में कृष्ण गोचारण करने के लिए वन में चले गए, लाखों लाखों गायें और लाखों लाखों सखा लोग। कैसे जा रहे हैं? चुपचाप जा रहे हैं सखा लोग न, कैसे जा रहे हैं? गायें और उनके बछड़े कैसे चल रहे हैं? खुदक करके चल रही हैं उनके बछड़े, और गायें कैसी हैं? उनका स्तन एकदम मिट्टी को छू रहा है, दूध चुचुआ रहा है, और बड़ी खूबसूरत काम धेनुए हैं, उसमें कोई काली है, कोई धवली है, कोई कुछ लाल रंग की, कोई चितकबरी है, कोई कुछ है, अद्भुत अद्भुत सखा लोग हैं। कैसे सखा लोग? सखाओं का समूह कैसा है? कैसे हैं सखा लोग? दाम सिदाम वसुदाम स्तो कृष्ण लवंगी इत्यादि कैसे सब सखा लोग? उनका उद्देश्य क्या है सखाओं का? गायों का उद्देश्य क्या है? बहुत आपने विलंब कर दिया, मैं सोचा जैसे पहले आ जाएंगे। बड़े उदार के कृष्ण के प्रति अत्यंत अनुरक्ति है, एक क्षण उनको नहीं छोड़। वो जाते हैं गौवा चराने के लिए नहीं, कृष्ण के संग के, और गाय किस लिए जाती है? कृष्ण का संग के। वो घास तो यहाँ उधर पड़ी हुई है, उसको चरवाहे की जरूरत। सभी का उद्देश्य कृष्ण, और गोपियां घर में बैठी हुई है, बातचीत क्या चल रही है? कृष्ण कैसे सुंदर हैं, उनका रूप कैसा है। एक सखी वो कह रही है वो कनेर के फूल लगाते हैं यहाँ तक इतना सुंदर, श्याम रंग के ऊपर में कनेर कैसा फहराता है ना? दूसरी गोप क्या जा रही है, ये क्या कर, उनकी फौहें कैसी है। तीसरे कहते हैं उनके कटाक्ष कैसे हैं, जब बंसी अपने अधरों में रख करके मुस्कुराते हैं तब उनकी क्या दशा होती है। कहते मत याद कराओ, किसी तरह से, अरे क्या कहें, हम लोगों का जीवन बेकार का बर्बाद किया। अखंड मतांग फल विदम न परम पिता, आंखों का फल केवल यही है कृष्ण के उस रूप को देखें। कौन सा रूप? सखाओं के साथ में एक वन से दूसरे वन में लाखों गायों के साथ में जा रहे हैं, बंसी बजाते हुए जा रहे हैं कृष्ण और बलदेव, उनमें जो पीछे जो बंसी धारण किए हुए हैं और आगे आगे बलदेव जी जा रहे हैं सिंगा इत्यादि लेकर के, और पीछे में जो खड़े हैं वो जब मजदूर बंसी की तान छोड़ते हैं और मुस्कुराते हैं तो जगत का ऐसा कोई नहीं जो मुग्ध हो जाए। वो कहती है ठीक है किंतु इससे भी और, जब राधा जी साथ में हो और उनकी तरफ में देख रहा हूं तब तो उनकी छवि एकदम निराली होती। कहते हम लोग दुर्भाग्यनी है, जैसा वो हिरणी धन्य है जो, देखिए कैसे इष्ट गोष्ठी चल रही है, ऐसे हम लोगों का ये मुक्त पुरुषों की इष्ट गोष्ठी। उनसे जो कम का होगा जो कि रागानुगा है वो लोग गोपियों को देखेंगे जी इनकी इष्ट गोष्ठी कैसी हो रही है, हम लोगों की तो ऐसी हो रही है। जो मुक्त अभी होने जा रहे हैं जिनको रति उत्पन्न हुए जात रति वाले, वो उन्हीं की लीला कथाओं को लेकर के चलेंगे, कृष्ण की लीला कथाओं को कम, उनके जो प्रिय हैं जिन कथाओं को लेकर के वो दिन रात मस्त रह गए उनकी कथाओं को, क्योंकि कृष्ण से संबंध उनकी सभी कथाएं। ललिता जी का गुण वर्णन करने में क्या वर्णन होगा, ललिता जी का वो कृष्ण संबंधी राधा संबंधी। अब रागानुगा जो भक्त लोग हैं बस इन्हीं लोगों का सब समय चिंतन करेंगे, उन्हीं के भावनाओं को कृष्ण के साथ में कैसे खेलते हैं विहार करते हैं, कृष्ण की कैसी सेवा करते हैं। उनसे जो नीचे वाले जो हैं अनर्थ युक्त हैं किंतु अभी थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं निष्ठा हो गई है वो क्या करेंगे, अनर्थों के लिए थोड़ा सा बातचीत करेंगे, इसलिए बातचीत करेंगे वो। अब रागानुगा जो भक्त हैं इनका जीवन चरित्र, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी इनका जीवन चरित्र देखो, महाप्रभु उनको रघुनाथ दास गोस्वामी अपने पास में लेकर के बैठ करके कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भालो ना खाई बे भालो ना परी बे हमानी मानो धोई कृष्ण नाम सदा लगो, अंतरे कर निष्ठा बाह्य लोक व्यवहार अचिराते कृष्ण तारण कर ले। ये इष्ट गोष्ठी है ना, भालो ना खाई बे अच्छा मत खाओ क्योंकि उसमें तुम्हारी रुचि हो करके आ सकते हैं कि रोज आएगा जो वही रबड़ी मलाई और महान भोग खीरा है उसमें रोग भी होंगे और तुम्हारा चित्त उधर में चला जाए, इसलिए मत जाओ, इसमें कृष्ण की भी स्मृति हो जाएगी इस गोष्ठी नहीं होगी, इसलिए ऐसा मत करो, भालो ना खाई बे भालो ना परी बे, अच्छा कड़पा पड़ेगा तो उसमें सौखी नहीं आएगी, ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं होगा, वैष्णव की चरण धूलि लेने में संकोच होगा जी, इतना सुंदर हमने पहना है ये संकोच होगा, भक्ति ठीक से नहीं होगी। तो ये सब चीजें आएंगी जो उनका जीवन चित्र कैसा कैसा, संख्या पूर्वक नाम गान नदी काल आवशान निद्राहार विहार, खाना पीना भोल सब छोड़ दिया, यहां तक कि अपना परिवार भी भूल गए, विवाहिता स्त्री परम सुंदरी उसको भी छोड़ दिया, माता पिता को विषय समझ करके उनका भी दिया हुआ अन्न नहीं ग्रहण किया और दिन रात कृष्ण के तिरह में रो रहे हैं, नाम करते हैं संख्या पूर्वक कितना 1 लाख से कम नहीं, कभी सोते हैं कभी वो भी मना, कभी खाते हैं चना कभी वो भी मना, कोई इसके तरफ में दृष्टि नहीं, देह दैहिक सब कुछ भूल गए हैं, कभी उनका स्मरण ही नहीं आता। श्रृंगार करना है, साधारण आदमी मेकअप में कितना समय लगाएगा, और उनको कोई जरूरत ही नहीं है। एक महीना तक, दो महीने तक दाढ़ी कमाया नहीं, पूर्णिमा को कटा, इधर भी कोई भ्रूक्षेप नहीं है, कभी मन आया तो किया, नहीं तो भी। किंतु दिन रात संख्या पूर्वक नाम गान नति प्रणाम वैष्णवों को, कृष्ण संबंधी लीला स्थलों को, कृष्ण को, कृष्ण के परिकरों को, दिन रात उनके भावों को शुद्ध करके, कभी राधा कुंड में, कभी श्याम कुंड में, राधा कुंड तटे कालिंदी को, कभी कालिंदी के, कभी नंदगांव में, कभी बरसाना में, कभी भांडीर वन में, कभी उद्धव क्यारी में, कहीं टेर का दम्ब में, कहीं राधा कुंड के किनारे, कभी श्याम कुंड के किनारे, हा हाय 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 कर रहे, जमीन में लौट रहे, हमारा जीवन व्यर्थ गया, कृष्ण की राधा जी की कृपा नहीं। तब प्रार्थना करते, हे राधे बज देवी की चरण, उनके इन चीजों का स्मरण दूसरों को कराएगा, अपने करते ये इष्ट गोष्ठी होगी उनकी, और उनसे भी जो नीचे हैं जिनका अनर्थ है वो क्या करें। यदि सच्ची उनकी अभिलाषा है भक्ति की तो भक्ति पर विचार करें, अन्य अभिलाषिता ज्ञान कर्म ध्यानाप्रतम अनुकूल कृष्ण अनुशीलन। भक्ति शुद्ध किसको कहते हैं, जिसको विचार करें अनर्थ कैसे दूर हो, गुरु के चरण में, वैष्णव के चरण में हमारी अनुरक्ति और ममता कैसे लगे, जो जो बाधाएं हैं, हरिनाम करते समय में संसार की चिंता आती है, ये कैसे हटे, हमारा सब कुछ उनके चरणों में न्योछार कैसे हो जाए, अपने लिए कुछ न रख सको। रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने जीवन में अपने लिए क्या रखा, कुछ रखा, अपना कुछ था, अपनी पत्नी तो थी ना, क्या किया, कोई भी ममता नहीं रखी, पैसा कुछ था, सड़ा हुआ अन्न लेकर के पानी से धोकर के कभी खा दिया, अजय उसे कैसे हम जीवित रह सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी छह गोस्वामी सबसे एज में अधिक के थे, सबसे अधिक एज उन्हीं की थी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी गोस्वामी से सबसे अधिक थी। अब बतलाओ क्या खाते हैं, कभी इतना सा मट्ठा वो भी नहीं, कभी कभी कुछ, कभी कुछ सड़ा गला अन्न धो करके जगन्नाथ पुरी में खाया।
जीवन धारण शक्ति कहीं और से आती है,
ये भक्ति से आती है। इन लोगों का स्मरण करना भी, उनके भजन के तरीकों को, ये भी इष्ट गोष्ठी है। संसारिक चीजों में लग जाए और उसकी इष्ट गोष्ठी, ये कैसे काम होगा, दिन रात उसी की चिंता है, तो फिर इष्ट गोष्ठी नहीं,
उससे नीचे वाले फिर तो ये करेंगे।
इसीलिए उनको जरूरी है कि किसी एक जो हमसे सुपीरियर हूं, जिनकी उस कथा में रुचि हो, कृष्ण के प्रेम में रुचि हो, हरिनाम में रुचि हो, धाम में रुचि हो, और तत्वज्ञ भी हो, अनाशक्त भी संसार से हो, ऐसे एक व्यक्ति को जरूर रखना है, तब तक इष्ट गोष्ठी होते नहीं। हमारे गुरुजी ने एक बार प्रश्न किया, हम लोग थे काफी लोग, उन्होंने कहा ये परिक्रमा कौन कर रहा है, तो सभी लोग जितने 8,000-10,000 आदमी है ये सब कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है, तो कौन कर रहा है, कहा ये हमारे गुरुजी कर रहे हैं, उन्हीं को सेंटर में लेकर के ये सब लोग कर रहे हैं, तो इसलिए परिक्रमा हुई। आज यदि पृथक पृथक रूप में अपना भाव लेकर के करें विषयी लोग, अनर्थग्रस्त लोग, तो उनकी परिक्रमा क्या होगी, वो संसार की इधर उधर की, जैसे गोवर्धन की परिक्रमा में हलूल जुलूल बातें, संसारिक बातें कहते जाते हैं, इसकी शादी नहीं, इसकी शादी, ये से सास से झगड़ा हो गया, उसको ये हो गया, उसकी शादी नहीं हो रही, वो बड़ी बदमाश है, वो बहुत बदमाश आदमी है, बस इसी तरह से पूरा परिक्रमा हो गया। कहा जब परिक्रमा हमारा परिक्रमा हुआ ऐसे एक व्यक्ति अंततः जो गाइड कर सके, इसलिए एक गुरु जी परिक्रमा करने से उनको यदि हम सेंटर कर करके चले, उनकी कथाओं को सुने, उनके विचारों को धारण करें, तब तो परिक्रमा। इसलिए इष्ट गोष्ठी में भी ऐसा जैसे रूप गोस्वामी की गोष्ठी होती थी, में क्या हो रहा होगा, भागवत का पठन, उस समय चैतन्य चैतामृत नहीं थी, उनके बाद में होने से रूप गोस्वामी की पुस्तकें चैतन्य चैतामृत की मैया है, उसे हजारों लाखों चैतन्य चैतामृत निकल आए रूप गोस्वामी के पुस्तकों से, गोस्वामी इसलिए उनकी गोष्ठी होती होगी तो क्या गोष्ठी होती होगी, बस कृष्ण के लीला चरित्र, राधा जी के चरित्र। ऐसे ही यदि ये हो और हमारी रुचि क्रमशः उनके प्रति आए, राधा कृष्ण के प्रति, तब तो ये इष्ट गोष्ठी, अन्यथा इष्ट गोष्ठी। संसार का अभाव किसी दिन कम होगा, कभी भी लाख वर्ष की हमारी आयु हो और करोड़ों रुपए हमारे पास में तो होगा, कभी हो ही नहीं सकता, इसके लिए परिश्रम अधिक करना चाहिए। ये कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति कैसे लगी आती, उसका लक्षण क्या है, संसार के लिए प्रयत्न करेगा फिर उसमें समय बर्बाद नहीं करेगा, वो अपने आप चल रहा है, दिन रात उसकी चिंता होगी कैसे कृष्ण के चरणों में हमारा इसी जीवन में कुछ उपलब्धि कर, तब तो अन्यथा होना बड़ा मुश्किल। इसलिए इस गोष्ठी मैंने साधु संग, साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग, साधु संग जीवन को मोड़ दे देते, चीज यही रहेगी किंतु चिंतन अब उसका दूसरा होता। भक्ति विनोद ठाकुर ने सबका साथ दिया, असत्संग दूर हो सत्संग हो। सत्संग क्या है,
इसमें तो अपने से ज्यादा
समजातीय यदि होगी तब तो सब बोल सकेंगे, और जिस गोष्ठी में सब समजातीय नहीं है, एक किंतु है, तो उसमें प्रधान रह करके सबको वो समझाएगा, सब उस चीज को समझते हैं कि नहीं वो उनसे पूछेगा, तो ये गोष्ठी होगी,
ये भी इस गोष्ठी में
जरूर ना, इसके संबंध में वार्तालाप हो रहा है, हमारा इष्ट प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, वो कैसे हो, इसमें बाधाएं क्या है, कैसे बढ़े, इस विषय में जब विचार होता है, इसकी आवश्यकता क्या है, इस गोष्ठी में विचार होगा। रावण के पास में कितने धन की कमी थी, कितनी थी कमी, जिसकी सोने की लंका, मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके घर सोने जवाहरात और हीरे इत्यादि के नहीं बने, उसमें वातानुकूल ये सब चीजें जो इंद्र ही पंखा और हवा दे रहे हैं, जबकि बादल उनके घर धो रहे हैं, उसका अधिक साथी देवता हवा झाड़ू लगा रहे हैं, अभी जो सबसे महंगी से महंगी शराब उसमें रावण के घर में होगी कि नहीं, जब हनुमान जी गए तो देखा जी सभी करके, उसमें किस चीज की कमी थी जो मनुष्य जीवन में हम लोग समझते हैं जी इस चीज की कमी है, उसको कोई कमी थी, चलने के लिए पुष्पक विमान मन की गति से भी अधिक चलने वाला। रावण की उम्र कितनी थी, त्रेता युग कहलाता है कितने का, 432,000 वर्ष कलि युग, इसका डबल हो गया और इसका तिगना हो गया और इतने ही संधि के वर्ष, तो 312
हो गया,
हो गया ना। अच्छा, वो त्रेता युग के प्रारंभ से वो था, तो कितना करोड़ उसकी उम्र हो गई,
प्रारंभ से।
हाँ, एकदम प्रारंभ से, सतयुग के प्रारंभ में। जय विजय हिरण्यकश्यपु हुए, इसके बाद में त्रेता युग जब आया तो ये इसका जन्म प्रारंभ में हुआ। कितनी लंबी आयु, और त्रेता युग के अंत तक रावण से भीड़ रहा है, रामचंद्र जी से भीड़ रहा है, और कितना सब कुछ जानता है, माया जानता है, बल भी है, विद्या वेद का सब कुछ वो जानता है, ब्रह्म तत्व जानता है, वेदांत पर अपना विचार लिखा है, लंका अवतार स्तोत्र उसके हैं, कितना बड़ा भारी दिग्गज विद्वान, अद्वैतवादी था, हम ब्रह्माष्टमि कहने वाला, इसलिए तो हम ब्रह्माष्टमि क्या सर्वम खलिदम ब्रह्म इसको मानने वाला। कल्पना कीजिए, जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसको उपलब्ध नहीं है, तभी सुखी रहा। जब वो नहीं सुखा तो इसके लिए हम चेष्टा क्यों करें, करा जाएगा ना। जिसको लाखों स्त्रियां जिसके काम को दमन नहीं कर सकी, सीता के लिए चला, और वही सीता उसके जान का ये बन गई, राग बन गई, उसके लिए मारा गया। इसलिए जीवन में, इस जीवन में इन चीजों से कोई भी संतुष्ट और सुखी नहीं हो सकता है, हम उसके लिए चेष्टा करते हैं, ये चीज की कमी है इसको करते हैं, चाहे भजन करते हैं तो भी, क्योंकि अनर्थ है भक्त लोग इसके लिए। वो देखते हैं हमारा, हम कृष्ण के दास हैं, उनको छोड़ करके आए हैं, इस चीज को कैसे पूरा करें, और उसके लिए जब परस्पर मत नहीं मिलता है तो लड़ाई झगड़ा हो, अपने बाप और बेटे में, स्त्री और पुरुष में, भाई और बहन में, इसलिए वैष्णव लोग इससे अतीत रह करके इस गोष्ठी में इन विचारों को जान करके संसार से कुछ विरक्ति होने तो भक्ति भी नहीं होगी। जितने परिमाण में भक्ति होगी उतने परिमाण में भगवत अनुभूति होगी, और उतने ही परिमाण में यदि नहीं हो रही, हम खूब भजन कर रहे हैं और संसार में उतना ही अटैचमेंट आ सकती है, तो क्या होगा, समझो भक्ति नहीं हो रही, गड़बड़ है। क्या श्लोक है भाई,
भक्ति
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 तुम बोलो, क्या अर्थ है, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, ये अथवा साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मुक्ति श्रद्धा, अथवा श्रवणंग कीर्तनंग स्मरण, अथवा हरिनाम संकीर्तन, एक भी होगा तो यदि ठीक ठीक होगा तो भगवान की अनुभूति होगी। भगवत विषय में भगवान की अनुभूति क्या है, भगवान के प्रेम की अनुभूति, सेवा की अनुभूति,
उससे ममत्व बढ़ेगा,
उससे ममत्व बढ़ेगी और उसमें आनंद होगा शरीर आत्मा में, और उससे होगा क्या, मन में भी आनंद होगा, उससे क्या शरीर में, और कभी कभी विरह होगा, ये दोनों चीजों की अनुभूति होगी, तत्व ज्ञान की अनुभूति होगी, अपने तत्व की, भगवान के तत्व की, भक्ति का स्वरूप, इन सब की अनुभूति हो, और इनकी अनुभूति होने से क्या होगा, संसारिक वस्तुओं के प्रति विरक्ति हो, उसके तरफ में मति नहीं जाए। तीन चीजें एक साथ में हुई है, उपमा क्या दिया,
खाने,
खाने,
कोई उद्यम कर रहा है उनका तीन लक्षण है, उद्यम कर रहा है या नहीं तीन लक्षण से पता चलेगा। पुष्टि क्या पुष्टि,
थोड़ा सा बढ़ने में गड़बड़ हो रहा है। भोजन करेगा ना तो भोजन करने के साथ ही साथ में उसकी पुष्टि होगी, तुष्टि होगी और खाने की वृत्ति, खाएंगे पेट भर जाएगा और कुछ भी दो नहीं लेगा, खाएगा तो तृप्ति होगा, बहुत सुंदर आज रसाला बना, मालपुआ तो लाजवाब था, रबड़ी की तो कोई तुलना नहीं थी, बहुत सुंदर रसगुल्ला तो एकदम प्याज पन जैसा था, चटनी बड़ी सुंदर बनी, ये रसा स्वादन भी होगा और साथ साथ आनंद होगा कि नहीं खाने से, और साथ साथ में क्या होगा, तो ये तीनों चीजें होंगी, सुतुष्टि पुष्टि
पेट भर जाएगा फिर।
इसलिए भक्ति कर रहे हैं और आत्मा किसी की प्रसन्न नहीं, बड़ा दुखी कोई है तो समझो जो भक्ति से विषम। दूसरी बात, यदि भक्ति कर रहा है पेट नहीं भर रहा है अर्थात उसको कुछ तुष्टि नहीं हो रही है, हम क्या कर रहे हैं तो समझो जो भक्ति नहीं हो रही, आत्मा प्रसन्न नहीं है और संसार में इच्छा होती है जैसे अब हमारा आलशान बिल्डिंग हो जाए, हम सुखी हो जाएंगे, हमको ये चीज हो जाए संसार की, हमको ऐसा वक्तृता दूं जैसे सभी लोगों को मोहित कर दूं, मुग्ध कर दूं, ये क्या चीज है,
ये भी वही चीज की का।
कोई भी चीज भगवान की भक्ति के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं, यही हम लोगों में कमी है, ये चीज हो जाए ना तो वो कुछ भी कर सकता है, उसको कोई संसार की क्रिया बांध नहीं सकती और नहीं तो हम लोग उसी में जीवन चला जाए। यह है ईस्ट कोस्ट।
अगर प्रचारक बनता है तो महाराज जी ये काम
न तो बनना नहीं पड़ता है, भक्ति करने से अपने आप जब उसकी उपलब्धि हो गई तो उसे रहा नहीं जाएगा, जब खाएंगे तो ठेकार आएगा कि नहीं आएगा ठेकार,
ये बेकार प्रचार है, प्रचार की बड़ी प्रचार
यही तो है ना, ठेकार तो आएगा, अपने आप बिना ठेकार का रहे नहीं। भजन करेगा उसकी जो क्रिया कुछ है तो वो तो बार में आएगी, उसको रुक नहीं सकती, किसी के पास में पैसा खूब है ना तो क्या होगा, उसकी मूंछें ऊपर रहेंगी, कुछ चिकनाई रहेगी, थोड़ा सा शान से चलेगा, होगा कि नहीं, उसके पीछे दो चार आदमी दस आदमी घूमेंगे, ये पैसा का लक्षण है ना, भगवान का भक्ति का भी तो कुछ लक्षण होगा। अपने आप जो सुनता है गुरु जी से अपने आप किरणों के समान वो निकलेगा अनायास, ये है प्रचार। आज इसको कुछ है नहीं है, उधार लेकर के इधर उधर से कर करके बोलता है और खुद भी पालन नहीं करता है, अनुभूति नहीं है, उसकी कोई बात सुन करके भी उसको विश्वास नहीं होगा, उसमें जो गुण है वही गुण उनके शिष्यों में होगा, भौतिक पदार्थों के लिए ये सब है, उनमें वो तीन चीजें नहीं होंगी, भक्ति परेशान हो तीन चीजें नहीं। एक आदमी दिन भर कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर रहा है सब कुछ भूल गया, ऐसा होगा ना, इसका अंतिम परिणाम सोचेगा जगत का, जगत का अंतिम परिणाम क्या है, जो अभी डायना जी का हुआ, यही अंतर बस। आज सब सब देशों के शासनाध्यक्ष लोग हाँ, और क्या क्या कर दे रहे हैं, पुष्पांजलि दे रहे हैं उनके चरणों में,
8-8 घंटे की लाइन,
अब बतलाओ
बीबीसी में 24 घंटे,
उससे लाभ क्या होगा, उसके आदर्श को ग्रहण करेंगे लोग, आदर्श उसका क्या था,
पति छोड़ के दूसरे के पास,
वो भी और भगवत से कोई संबंध नहीं, अंत में दुखित जीवन।
सोशल वर्क किया तो खुशी काफी, जैसे गरीब लोगों की, एड्स की, इन लोगों का मदद किया ना उसने।
गरीब लोगों का क्या मदद किया, क्या मदद किया, मतलब वही उसे जीवन को सुखी कर सकेगी। उसको मान ले कि किसी को 10,000 पाउंड दे दिया, क्या होगा, किसी को रोग हुआ तो उसको सहानुभूति जाकर के कर दी। मादर टेरेसा है, उसे जगत का क्या कल्याण है, कुष्ठव्याधि को थोड़ा सा कुछ उपशम किया और फिर दूसरे जन्म में ये मर जाएगी तब उसे अधिक होंगे, क्या हुआ क्या। एक आत्मा का कल्याण यदि कर दिया जाए तो उसे कोटि कोटि गुण सफल, जिसको जीवन में सुख और शांति हो सकती। अब उसी पोस्ट के लिए उन लोगों में झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, टर्स आप तो कर नहीं सकते, जरठ विद्रो अब उस पद पर बैठ करके और रुपया कमाएंगे या कुछ करेंगे, अब उसके लिए झगड़ा चल रहा है। वो कहता है जो हम होंगे, वो कहते हैं जो हम, सिलेक्शन या क्या होगा सब, और उसके लिए विवाद झगड़ा भी से चल रहा है। उत्तराधिकारी के लिए हो गया, he saw that there is a boy there on the bed. Krishna at once, who was two-handed on the bed of Yashoda. Yashoda was also sleeping there. And a करती है ना, इंसान तो किसी न किसी रूप में कर ही रहा है, क्या लाभ है। और वही बेटा तुम्हारा विरोधी हो जाता है, जिसके लिए तुमने सर्वस्व, अपना खून, अपना शरीर सब कुछ दे करके जीवन भर सेवा की, और वो तुम्हारा विरोधी होता है। बाहर का एक कुष्ठ व्याधि है या दूसरा व्याधि है, उसके प्रति सेवा कर रही, तुमको मिलेगा क्या, उसके कर्मों का जो फल है वो तुम्हारे अंदर में आकर के तुमको भी उसका फल भोग कर आएगा। तुम समझती नहीं है, है कुछ भगवान के भजन के बिना कभी भी लालसा कम नहीं। प्रतिष्ठा तो खई है, जिसको बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष लोग सलामी मारते हैं, ये प्रतिष्ठा तो है ही है। भगवान से क्या संबंध है उसका, यदि थोड़ा सा भगवान के साथ में संबंध होकर के ये करती तो उनका भी कल्याण होता, उसका भी। बात बुरी नहीं है, ठीक है। भगवान के प्रति कर क्या रहे, एक जीवात्मा को किसी प्रकार से रोगी को ये कहती जे तुम गॉड का तुम स्मरण करो, कहीं देखा है राइटिंग में, अभी हो नहीं सकता, बस थोड़ा सा वैसा ही लौकिक। लाख रोगों की सेवा करने से भी यही होगा जे उसको परलोक में कुछ स्वर्ग इत्यादि जैसा धाम मिल करके फिर वहां से फिर आना पड़ेगा। गीता में तो स्पष्ट रूप में कृष्ण कहते हैं ते तंग भुक्त्वा सर्वलोकं विशालं खीणे पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतिं काम कामा। बस यदि थोड़ी सी उसमें सुधार हो जाता तो हो जाता। गांधी जी का जैसा तैसा सब समय राम नाम तो करते थे, उनका उसी से कल्याण। यद्यपि उनके भगवान निर्गुण हैं, तो अभी राम 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 कहते थे वो तो एक लाइन में आए। भक्ति होने से अपने आप लोगों के प्रति प्रीति हो, उसकी सहायता की भावना होगी, उसका कल्याण की चिंता करें। जो भक्ति नहीं है तब वो बेकार का, वो जीरो है। ये पराई का मतलब क्या, भगवान को छोड़ करके कोटि कोटि जन्मों से ये दुखी सुखी हो रहे हैं, ये पीर पराई जन।
नहीं
ठीक है, ये पीर पराई जन यही तो है, पर दुख दुखी सनातन स्तम प्रभु माश्रय, वो सब संसार के दुखी जीवों का ये जानते हैं कि दुख का मूल कारण क्या है, उसको खोज करते हैं। जैसे डॉक्टर है, आपको बलगम आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो इसके लिए दवा नहीं दे रहे, वो देखेगा जी ये बलगम किस से, ये क्यों तैयार हो रहा है, बीमारी का मूल क्या है, उसको देखेगा। हमारी जितनी बीमारियां हैं, जितनी इस संसार में कष्ट दुख है, उसका मूल क्या है, क्या है, भगवत विस्मृति, यही भगवत विस्मृति, भगवान को भूल जाना यही है। ये यदि ठीक हो जाए तो अपने आप सबको सदा के लिए ठीक हो जाए।
असल में लोग जैसे डायना मर गई है, वहां पे लोग जाके आंसू बहा रहे हैं तो कहेंगे हाँ ये है परदुखी, किसको परदुखी,
ये मर गए। असल में हम लाख लोग मर जाती जा करके रहेंगे तो क्या होगा, इसलिए भागवत में ये सब उपाख्यान दिए गए। यदि एक आदमी जा करके भगवान नाम वहां पर कर देता, कीर्तन उसके उद्देश्य से कर देता, गॉड गॉड भी कह देता, तो भी कल्याण होता है।
आज एक बार मैंने सोचा था इसको चिट्ठी लिखने का,
हाँ लिख दो,
पहले अच्छी लगती थी, तब सोचा था
सहानुभूति कुछ देना चाहिए। कीर्तन वर्तन सुनाइए, बहुत बोल, उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिखा, ये भारत वासियों के लिए उन्होंने कहा, ये विश्व के समस्त प्राणियों के लिए, अखंड विश्व ब्रह्मांड के लिए, इसलिए मैं समझ रहा हूँ उसका मतलब समझ रहा हूँ, इसलिए उत्तर दे रहा हूँ। सच बोलो, ये केवल भारतवर्ष के लिए है, ये शरीर आत्मा नहीं है, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, ये भारतवर्ष के लिए केवल कहा गया है, नहीं विश्व के लिए। भारतवर्ष में ही इस सत्य को कितने आदमी ग्रहण करते हैं, यदि गिना जाए अंगुलियों पर गिना जा सकता है, तो भारतवर्ष के लोग नहीं लेते, अब तो विश्व में चारों तरफ में फैल गया है, एक न एक दिन तो जानेंगे। हाँ, इसलिए तो भगवान प्रचार करा करके विश्व को बतला रहे हैं हम लोगों के द्वारा। अब तो ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है, देश नहीं है, गांव नहीं है, शहर नहीं है, जो गीता को कृष्ण को नहीं जानते, राम
को।
तब उसमें प्रतिष्ठित नहीं,
गीता को कोट ही करते हैं, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, और विश्वनाथ चक्रधीरपाद जी ने कहा ये बात तो तब की जाए जब भक्ति नहीं कर सकते। उन्होंने इस श्लोक को आउट राइटली एकदम
सारे गीता को महाप्रभु जी ने कहा ये हो बात, इतना बड़ा ज्ञान, और महाप्रभु जी ने कहा ये हो बात, प्रेम के सामने इसका कोई मूल्य नहीं। गीता के ज्ञान से क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म बनेगा जिस पर प्रेम का महल खड़ा होगा, नहीं तो गीता का ज्ञान हम लोग भी ऐसे ही पा जैसे हो, किंतु स्पष्ट रूप में बतलाया गया सर्व उपनिषदो गाओ, उपनिषद जितने हैं ये गाय हैं, उसका दूध गायों का दूध एक चीज, और एक है निगम कल्पतरु, निगम कल्पतरु क्या, केवल वेद ही नहीं, वेद का उपनिषद ही नहीं, सारा वेद
पुराण मिलाकर,
पुराण इत्यादि मिला करके, महाभारत इत्यादि सबका ये क्या है, गुठली और ये सब रहित, छिलका रहित ये रस, उससे ये श्रेष्ठ है। गीता निकला है, उनके मुख से निकला है, और भागवत कहाँ से निकला? व्यास देव जी के मुख से, सुखदेव गोस्वामी के मुख से। इसका महत्व बहुत अधिक, उसमें प्रेम की बातें है। इसलिए गीता की अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा, किंतु जगत के लोगों को यही पहले जरूरत है गीता
का।
ऐसा है जैसे ये सब नित्य चीजें हैं, नित्य चीज। गीता भी आज की नहीं है, कितने करोड़ वर्ष सूर्य को, और उस सूर्य से पहले फिर अर्जुन को सुनाया होगा। अब जैसे मैं भागवत की व्याख्या करता हूँ, तो कुछ उसमें और चीजें लगाता हूँ, तो ऐसे ही होगा। किंतु ऐसे होता है जैसे कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन और कृष्ण का संवाद गीता कहलाता है ना, तो पहले लिखा गया धृतराष्ट्र उवाच, क्या है वो धर्म क्षेत्र, बस हो गया। इसके बाद में संजय कहते हैं, अब संजय ने आरंभ किया, अब वहां से लेकर के करीब करीब 30-35 या कितने श्लोक हैं वो कह रहे हैं। अच्छा, वो अब संजय जी कह रहे हैं, जैसे ये तो दुर्योधन जा करके अपने गुरु से ऐसा कहा, जैसे भीम के अधिनायक में सारी सेनाएं बड़ी सबल रूप में वहां पर खड़ी हैं और पर्याप्त है, हमारी सेनाएं कुछ हैं भी किंतु उतनी सुरक्षित नहीं। इसके बाद में वो गया भीष्म पितामह के पास में, उनसे कुछ बोला, ये तो कृष्ण का उपदेश नहीं है। अब इसके बाद में अर्जुन जबकि गांडी वो छोड़ करके रथ पर रख दिया और शुष्क मुख होकर के जब बैठ गए और कृष्ण से कहा कि मैं आपका शिष्य, मुझको समझ में नहीं आता है मैं युद्ध करूं कि क्या करूं, मुझे कुछ पता नहीं। अब यहाँ से कृष्ण उवाच, यहाँ से भागवत गीता है, पहले वाला क्या है? पहले वो तो कृष्ण के मुख से नहीं निकला, तो इसके लिए बतला रहे हैं। जैसे नमक है ना, नमक में कोई चीज एक डाल दो, चावल का टुकड़ा या कुछ और दे दो, कोई भी चीज दे दो, तो गल करके नमक हो गया, तो भी तो नमकीन लगेगा ना। नमक के समुद्र में कोई भी चीज डाल दो तो गल करके कुछ दिन में क्या होगा, तो भी समुद्र का अंग हो गया। तो इस तरह से ये कृष्ण के मुख से जो भागवत गीता निकली है उसमें धृतराष्ट्र उवाच, दुर्योधन उवाच, भीष्म उवाच इत्यादि भी समुद्र में कृष्ण के वाणी में मिल करके उन्हीं के वाणी में घुल मिल करके एक हो गए, इसलिए वो भी गीता है। ऐसे श्रीमद महाभागवत के अभी सुन, श्रीमद भागवत है, व्यास जी जीव कर रहे हैं या सुखदेव गोस्वामी, ये तो भागवत है, किंतु उसके पहले जो और जो संवाद है वो भी उसमें मिल करके वो भागवत है। लीजिए।